आमतौर पे मटेरियल वर्ल्ड में भक्त हो या न भक्त हो सबको चमत्कार अच्छा लगता है, और चमत्कार की ओर मुड़ने की जो प्रवृत्ति है वो सब में रहती है। खास करके कुछ डिफिकल्ट हो गया ना लाइफ में, समझो कुछ बीमारी हो गई, ऐसे ही जैसे मेरी बेबी है, मेरी बेबी, उसमें अधिकतर लोग चमत्कार के विषय में सोचते रहते हैं कि आप वो बाबा के पास जाओ, वो ना उसका बहुत रिकॉर्ड है, वो सब बच्चे ऐसे स्ट्रेचर पे आए हैं और दौड़ के चले गए, ऐसा बहुत सारा स्टोरीज उसका है, आप जाइए वहां पर। तो उसमें क्या होता है कि हमको पता है कि ये केस में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक उम्मीद पैदा होती है कि कुछ चमत्कार होगा, और वो चमत्कार मुझे चाहिए रहता है, आई वॉन्ट दैट चमत्कार। ये लड़के का रिजल्ट अभी 4 विषय में फेल आया है, तो आप बोलते हैं उसको री इवेल्यूशन में डालो, रीचेक में डालो, शायद हो सकता है कुछ, तो चमत्कार होगा ना वो। अगर 4 विषय में फेल है फिर भी आपको रीचेक में कुछ उम्मीद है, मतलब चमत्कार होगा तभी वो होगा ना रिजल्ट कुछ, यानी पीछे भी हुआ है। अरे फेल हुआ लड़की जो है ना बाद में बोर्ड में फर्स्ट नजर आई, वो गलती से उसको एक विषय में फेल किया था, लेकिन एक्चुअली उसका मार्क ये है और वो जोड़ के यूनिवर्सिटी में टॉप है, वो लड़की बोर्ड में टॉप नंबर पे आई, लेकिन उसका बाकी कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो वो कथा पकड़ के आप अपना चमत्कार का सोचते रहेंगे, ऐसा है वो चमत्कार। ये विषय भक्ति में किधर भी नहीं, वो साइंस है, उसको जेमोलॉजी कहते हैं, वो कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, वो साइंस है, उसको साइंटिफिक नॉलेज आपको होगा। नहीं, सिद्ध व्यक्ति का सवाल नहीं, हमारे में सिद्ध कौन है, एमडी और सुपर एमडी जो है ना, हमारा सिद्ध व्यक्ति है ना, मेडिकल में सिद्ध व्यक्ति कौन है जो सुपर स्पेशलिस्ट है, वैसे जेमोलॉजी में भी कोई एक्सपर्ट लोग हैं, वो बताएंगे आपको कि आपको ये दोष है तो आपको मणि पहनना चाहिए, आपको पुखराज पहनना चाहिए, आपको पितृ दोष है, आपको ये दोष है, आपको चांदी के अंगूठी में लास्ट फिंगर में मोती पहनना चाहिए, उतना साइंस है वो। अगर कोई जानकार व्यक्ति है और वो साइंटिफिकली बात करता है, आपको समझाता है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे आप क्रोसिन खाते हो बुखार के लिए, वैसे वो भी एक दवाई है उसकी, उसमें अंधश्रद्धा नहीं है, समझ में आपको है? हम लोग उसको अभी अंधश्रद्धा मानते हैं क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं उसके बारे में, ये अंधश्रद्धा नहीं है वो। तो आपका प्रश्न क्या है?
तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये अपना बिजनेस के लिए बोलते होंगे कि सच में वो ऐसे कोई
बेस्ट चीज है ना, बेस्ट चीज, इस चीज में ना पढ़ना ही अच्छा है, क्योंकि आपको भगवान ने अपने संतों की तरफ से भगवान नाम दिया है, 4 नियम दिए हैं, भागवत दिया है, भक्ति मार्ग दिया है, लक्ष्य का भी, जीवन का लक्ष्य भी दिया है, सब कुछ आपको कर दिया है, तो आपको अभी इससे ऊपर कोई और प्राप्ति नहीं है, इसके ऊपर और कोई प्राप्ति नहीं है। लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो सिद्ध प्रणाली मंत्र भी बाकी है अपना, भाई अभी वो क्या ब्रज गोपिका दीक्षा मंत्र भी देना बाकी है आपको, ऐसे अभी बहुत लोग वृंदावन में बात करते हैं, बहुत लोग बात करते हैं ऐसे कि आपको मैं दे सकता हूँ, आपको रोज 108 माला जप करना है और मैं अभी क्या नाम है इसको ब्रज गोपी का मंत्र को दूंगा आपको, फिर आपको उसी भाव में भगवान की सेवा करनी है। तो हमारा कहना यह है कि एक बार हम लोग किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनका अनुग्रह लेते हैं, तो उसके ऊपर जीवन में कोई प्राप्ति नहीं होती है। और आपको अगर श्रद्धा है तो उसी गुरु की कृपा से आपको कृष्ण मिल सकते हैं। एक बार आपने खाली परीक्षा कब करनी है, जब तक वो गुरु सही गुरु है कि नहीं, ये परीक्षा आपको करनी है, जब तक इतना टाइम लगे उतना ले लो, आपका परीक्षा करो, परख लो। लेकिन एक बार श्रद्धा हो गया ना कि ये जेन्युइन गुरु है, उसके बाद में परीक्षा नहीं करते उसकी। एक बार जेन्युइन गुरु ऐसा मालूम हो गया और आपने दीक्षा ले लिया, उनका शिष्य बन गए आप, उसके बाद में 50 बार उनको परखते नहीं है, बार बार रही एक साल में एक बार उनकी NABH वापस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और जहां हमको पता नहीं ना, अभी ये जो है ना, ये बात जो है ना, वो उनके अंदर उनके गुरु जो आते हैं, इसका आपके लिए क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? खाली आपको श्रद्धा के ऊपर ही एक्सेप्ट करना है उसको, लेकिन सच है कि झूठ है वहीं से हमारा डाउट शुरू होता है। तो ऐसे विषय में भक्त को पढ़ना नहीं चाहिए। मुझे भी ऐसे, मुझे तो 15 साल में कितना लोगों ने बताया होगा, कितने तरह के लोगों के बारे में बताया होगा, क्या क्या नहीं बताया होगा कि आप जाओ, उनका तो ऐसा ख्याति है कि वो आपके केवल बच्चे को देखेंगे, ऐसा देख के ही वो उसका रहेगा ना, मन आएगा तो वो बच्चे को देखेगा, ले जाएगा अंदर, कुछ दवा देगा, ठीक कर देगा उसको। लेकिन मुझे जो जहाँ तक नॉलेज है, मैं भी डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता है, क्योंकि ये सब ऐसा एरिया है जो तो सच होगा तो भी मुझे उसमें नॉलेज नहीं है, मेरे लिए अंधकार का एरिया है वो, एरिया ऑफ डार्कनेस। वहाँ पर मैं वेंचर क्यों करूँ उसके अंदर जाके, क्यों रिस्क ले लूँ? हमारे आचार्यों ने ऐसा बताया है कि जिसको सही गुरु के संप्रदाय के गुरु के माध्यम से भगवान का नाम मिला है, उसको ना और कोई चमत्कार के पीछे भागना नहीं चाहिए। जो भी आपके नसीब में है उसको स्वीकार करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी हम लोग बुखार है तो गोली खाते हैं, ऐसा नहीं कही बुखार है तो भगवान ठीक करेंगे, ऐसा नहीं बोलते। जो अवेलेबल है, जो ओपन साइंस है, जो लॉजिकल है, जिसको परखा गया है और रिजल्ट देखा गया है, उसको फॉलो कर सकते। आयुर्वेद है, आयुर्वेद के किताब से हिसाब से फॉलो हो रहा है तो उसको ले सकते हैं। लेकिन कोई और कोई पैथी है जो आपको पता नहीं है और चमत्कार चमत्कार की बातें कर रहे हैं, तो इसमें ना एनर्जी वेस्ट होती है बहुत, और इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनल हालत ख़राब होती है और बाद में दुख बहुत भयंकर होता है अगर नहीं हुआ तो। अगर आपने मोदी पहन भी लिया ना, समझो कुछ नहीं हुआ, तो आपको डिटैच रहना चाहिए, वो मोदी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि मुझे लड़का हो जाएगा, अभी उसको डॉक्टर ने बोला है ये पहनो 6 महीने से पुत्र प्राप्ति हो जाएगी, डिटैच होके पहनो उसको अगर पहनना है तो, अटैच होकर मत पहनो। हमारा तो कहना ऐसा ही है। मेरे घर पे अभी ना कितने लोगों ने बताया कि आपका घर वास्तु के हिसाब से एकदम उल्टा है पूरा, कैसे रहते हो आप इधर, देखो बच्ची भी आपकी इसकी वजह से ऐसे है, ऐसा उसकी वजह से इसका वजह से। तो मैंने कई साल तक ध्यान ही दे दिया उसके ऊपर। तो एक दिन एक बड़ा घर पर आदमी आया और बोला कि अरे प्रभु जी ये रूम में सोते क्या? मेरे भाई बोले हाँ यहाँ सोते हैं। तो वो तो हमेशा थके थके होंगे ना, हमेशा रोज टायर्ड रहेंगे ऐसे। बोला हाँ सही बात है, ये प्रभु जी ऑलवेज टायर्ड, और वो यहाँ रह भी नहीं पाते होंगे ना, वो तो बाहर ही रहेंगे इस रूम के हमेशा। हाँ प्रभु जी हमेशा ट्रैवलिंग में रहते हैं। तो बोला वो सब तो ये रूम की वजह से है, इसका फ्लैट का जो नक्शा है उसकी वजह से है, आप ये चेंज करो, आप लोग यहाँ सोने लगो, प्रभु जी को वहाँ सोने दो। और बहुत सारा बताया यहाँ पर ऐसे वैसे, ठीक है। तो फिर हमने थोड़ा बहुत वास्तु का उस घर में काम किया, कुछ कुछ जो बोला था वो किया, लेकिन हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने वो फर्क नहीं पड़ा, उसको भी ध्यान नहीं दिया। मैं बोला मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो खरी बोल, आई डोंट केयर। उल्टा मेरा ट्रैवलिंग बढ़ गया और अभी भी मैं उसी जगह पे सो रहा हूँ, मतलब जैसा उसने बताया चेंज करके हम लोग सो रहे हैं। मुझे कहा, मैंने कहा लगा चेंज करने में कोई नुकसान नहीं है, चेंज में कोई ऐसा बड़ा कुछ मेरा खर्चा और ऐसा कुछ बड़ा भयंकर काम नहीं करो ना। उनको ए रूम में लाया, मैं उस रूम में चला गया, बस वो ठीक है, वो करने जैसा है कर दिया। उसने बोला कि आपने दहलीज पे ना स्टोन का आपने दहलीज बनाया ना, उंबर तो था ना वो जिसमें रंगोली निकालते हैं, उंबर मतलब क्या दहलीज वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, उम्रो, उम्रो। तो वो उम्रो जो है ना वो लकड़ी का बना, संस्कृति में हमारे लकड़ी का ही थ्रेशोल्ड होता है, तो मुझे मालूम था कि लकड़ी का होता है, हमारे सब घरों में पहले भी लकड़ी का ही था, तो मैं लकड़ी का लगा दिया, आसानी से मुमकिन था, उसमें क्या प्रॉब्लम है, रंगोली निकालने के लिए अच्छा ही है, वो टाइल पे रंगोली ऐसी खिसक जाती है ना, लकड़ी पे टिकती है, तो हमने उस पर लकड़ी का अंबर लगाया, उसका लकड़ी लेके आया, वो लगा थोक दिया उसके ऊपर और दो तीन चीज किया बस। उसने एक कुछ यंत्र लगाया, बोला कि इसमें आपको प्रार्थना करने लो, उसमें प्रार्थना करने को प्रॉब्लम नहीं है, प्रार्थना करेंगे, रोज प्रार्थना करते हैं, बट हुआ कुछ नहीं। यहाँ तक कि हमको, मुझे एक पता था जो आपको पता होना चाहिए, कि समझो आप रात को सो रहे ना, तो आपका सर ना टॉयलेट की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट एक नेगेटिव एनर्जी की जगह है, उधर टॉयलेट का दरवाजा खुला छोड़ के उधर सर करके सोना नहीं चाहिए, तो आपके नींद में अफेक्ट होगा। तो मुझे वो दरवाज़ा बदली करने का था, तभी जब वहाँ रिपेयरिंग किया ना घर में मैंने, तो दरवाजा कैंसिल कर दिया, वहाँ पर दीवार बना दिया और यहाँ से दरवाज़ा बना दिया और वहाँ पर दो कबर्ड रख दिया, तो मेरे नींद में फ़र्क पड़ा, नींद में बहुत डेफिनेटली फ़र्क पड़ा। खुले दरवाजे की ओर सर करके सोना नहीं चाहिए, वहाँ पर बहुत एनर्जी फ्लो होता है, दरवाजा है ना ऐसा खोल के वहां पर सर करके सोना नहीं चाहिए, आपको इधर सोना चाहिए दीवार की ओर। ये सब मुझे पता है, तो मैंने जब रिपेयरिंग का समय आया तो वो भी कर दिया। तो आप लोग बोलेंगे देखो प्रभु जी ने सारा चीज ना वास्तु के हिसाब से किया है, ऐसा नहीं, मुझे मालूम है ना, मुझे पता है ना मैंने क्या किया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन मिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा चमत्कारिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके नसीब में आपके कर्म के हिसाब से जो होने वाला है वो तो होगा ही, होगा ही। उससे आप वास्तु करके या कोई मोती पहन के उसको भाग नहीं सकते उससे आप। मैं आपको एक सच्ची घटना बता दूंगा, उसको आप जोक समझ लो या तो सच्ची घटना समझ लो, वो सच्ची घटना है। एक वास्तु को जानने वाला जिसका वास्तु ही बिजनेस है, उसको रेंटल घर पे जाना पड़ा क्योंकि उसको घर चाहिए था, तो मीरा रोड में आया और वो खुद ही लोगों को वास्तु का वो है ना कंसल्टेशन वगैरह देता है, उसका एक पार्टली इनकम उसका भी था। तो वो ऐसे घर पे गया, उसको भी बहुत घर ढूंढा, अभी उसको नॉलेज है ना अभी के जो वास्तु वाला आदमी तो क्या करेगा। आजकल तो लोग क्या करते ना, नया घर लेने के समय वास्तु वाले को लेके जाते हैं और हर विजिट का 3,000 रुपये लेते हैं, वो बताते हैं कि ये घर सही नहीं है, दरवाज़ा सही नहीं है ऐसा। मैं उनको बोलता हूँ कि आप ना मुझे मीरा रोड में एक घर ढूंढ के निकालो जो परफेक्ट है, एक घर निकाल के दिखाओ, एक घर जो हर तरह से परफेक्ट है, फिर आपको 3,000 रुपये देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे जहाँ जाते हो हर जगह बोलते हो ये गलत है ये गलत है, तो फिर सही निकालूँ कहाँ से। और मैंने एक भी चैलेंज दिया है कि आपने एक प्लॉट ले लो जगह का, ओपन प्लॉट ले लो, सारी दिशा फ्री आपके लिए, आप कौन से दरवाजे में रोड दरवाजा खोलना है, दिशा में कौन सी दिशा में किचन रखना है, आप सब करो और मुझे परफेक्ट घर बना के दिखाओ। नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक शास्त्र है, वो कर्म के फल का शास्त्र। तो क्या हुआ, वो घर में उसको बहुत ढूंढा, उसे कहीं मिला नहीं, लेकिन जो जमा उसको जाना पड़ा उसको, तो वो घर में जैसे ही उसने कैलकुलेट किया तो लगा कि इस घर में कोई ना कोई मरने वाला है। तभी मरने लायक कौन है, सबसे बुजुर्ग मेरी माँ ही है, ऐसा उसने विचार किया और बहुत कोशिश किया उस घर को छोड़ने के लिए, बहुत कोशिश किया। बहुत कोशिश किया, लेकिन उसकी माँ उस घर में गुजर गई और फिर उसका घर चेंज हो गया। उसका आप झोंक बोल सकते हो या सत्य बोल सकते हो, लेकिन जब तक माँ उस घर में थी वो घर को बदली नहीं कर सका। कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती रही, उसका कुछ जमा ही नहीं, और माँ का डेथ हो गया। मतलब उसका कैलकुलेशन बराबर था, लेकिन वो माँ की डेथ चेंज कर सका क्या? अपनी माँ को नहीं बचा पाया वो। जब माँ उस घर में गुजर गई उसके बाद में उसका घर चेंज हो गया, कर पाया वो चेंज कर पाया। यही उसका लिमिटेशन है, ये ध्यान रखना आप इस बात का। अगर मेरे नसीब में ट्रैवलिंग करना है तो बेस्ट ये है कि मैं भगवान के लिए ट्रैवलिंग करूं, भगवान की सेवा में ट्रैवलिंग करूं, तो वो एक कर्म का फल भी है और भगवान की सेवा में भी लग गया वो। अगर मैं कोई और पिक्चर देखने ट्रैवलिंग कर रहा हूं, शूटिंग करने जा रहा हूं, या कुछ ऐसा करने जा रहा हूं, तो गलत होगा। लेकिन अगर मैं ट्रैवलिंग बढ़ गया है और वो प्रचार के लिए बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो थक जाऊंगा तो आके सो जाऊंगा, रेस्ट ले लूंगा थोड़ा सा। लेकिन जो मेरे नसीब में है वो कर्म को भगवान के लिए कोई मिटा नहीं सकता है, इसलिए चमत्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इलाज भी करना चाहिए, लेकिन इलाज करने के बाद ठीक होगा ही ये सोच के इलाज नहीं करना चाहिए। जब होगा तभी ठीक हो जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं हुआ, और नहीं होना है तो नहीं हो जाएगा। उत्तरकाशी गए थे ना अभी, तभी भी ऐसे कुछ चमत्कारिक बातें हमको बताई गई और सुन रहे थे हम उसको। तीन किसी ने कहा 3 महीने में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो हम कहेंगे 3 महीने के बाद देखेंगे क्या होता है। तो ऐसी बातें दुनिया में बहुत होती रहती है, वो आपको भक्ति मार्ग से भटका सकती है। जिस व्यक्ति को भक्ति में श्रद्धा है उसका मन जो है ना विचलित नहीं होना चाहिए। उसका मन विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मन चमत्कार की ओर कब बढ़ता है पता है आपको? जब बहुत गहरा संकट आता है ना, बहुत भयंकर संकट आता है ना, जानलेवा बीमारी होती है या कैंसर हो जाता है, मृत्यु सामने आ जाती है, या बहुत बड़ी दुर्घटना होती है, सुनामी आ गया है सब, तो हम चमत्कार में फिर अपने आप फंस जाते हैं उसके अंदर। उस समय तो स्थिति ऐसी होती है ना, इसलिए हमारी श्रद्धा जो है ना वो हमको शांति काल में मजबूत करनी चाहिए। क्या समझ में आया? जब कुछ हादसा नहीं हो रहा है, दुर्घटना नहीं हो रही है, कोई भयंकर इवेंट नहीं हुआ है, जब सब कुछ ओके चल रहा है, मतलब सो कॉल्ड ओके, अभी गर्मी है बहुत लेकिन ठीक है, अभी मर नहीं रहा है कोई इसमें, उस समय हमारी श्रद्धा को मजबूत करने का काम साधना हमको करनी चाहिए। जैसे वॉर नहीं हो रहा है, वॉर कोई युद्ध नहीं चल रहा है अभी, तभी आपको अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि वॉर आएगा तभी आप अच्छा युद्ध कर सकते हो। तो वॉर में जीतना है तो प्रैक्टिस कभी करना है आपको? शांति में प्रैक्टिस करना है। ऐसा इंग्लिश में कहावत है, इफ यू स्वेट ड्यूरिंग पीस देन यू विल ब्लीड लेस ड्यूरिंग वॉर। यू स्वेट ड्यूरिंग पीस, पसीना बहाएंगे आप शांति के समय तो युद्ध में आपका कम खून बहेगा। अगर शांति के समय आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे युद्ध में बहुत खून बहेगा आपका। उसी तरह से साधना कब करनी है? संकट आने के बाद साधना नहीं करनी है, साधना शांति के समय करनी है, ताकि सब संकट आएगा तो आप डगमगाएंगे नहीं, हिल नहीं जाएंगे, टूटकर गिर नहीं जाएंगे। तो संकट में जो आदमी क्या कहते हैं, भ्रमित होता है ना, भ्रमित, उसका कारण है कि उसने साधना कभी अच्छा नहीं किया है, इसलिए इतना वो भ्रमित हो गया है। और संकट के समय शांत कौन रहता है? जिसने अच्छा साधना किया है, उसको पूरी श्रद्धा है, तो वो चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता है, वो शांति से उसको हैंडल करता है। और कोई प्रश्न है?
इससे रिलेटेड मैं एक्चुअली आपके बारे में सोच रही थी कि वो नीला राधे माता जी को आपने कितना एनकरेज किया और कॉन्स्टेंटली आप यही करते रहते हो, कहीं कोई भी साइड पे आप जाते हो तो आपका काम ही यही है. सो माई क्वेश्चन इज वॉट इट टेक्स टू बी कॉन्स्टेंटली कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो मैं सोच रही थी कि डज इट रिक्वायर गुरुज मर्सी, इज इट द प्रायर थिंग, और या फिर मेरा खुद का साधना उतना स्ट्रांग होना चाहिए, या फिर कृष्ण सेवा उतना स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब वॉट इज द सीक्रेट बिहाइंड.
To whom much is given, much is expected. अगर हमारे जीवन में जितने बहुत संकट आए हैं उसमें अगर हमने हर चीज़ में हमने हेल्प लिया है, हमको मिला है हेल्प, तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि दूसरों को भी हेल्प करें. और हम गुरु महाराज को भी देखते हैं ना, उनका प्रोफेशन क्या है, वही प्रोफेशन है, जहाँ जाए वहाँ पर दुखियों को दुख से निवारण करने का प्रयास करते हैं और उस दुख में भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं और उसका निवारण करते हैं, शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उत्साह देते हैं, बल देते हैं ना सामना करने के लिए. सबसे बड़ी बात यही है लाइफ में. उसके लिए मैंने प्रैक्टिस भी उसके लिए छोड़ा, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस जो मैं कर रहा था वो मैं किसी को भी हायर कर सकता हूँ उसके लिए, लेकिन हर दुखी संकट में प्रेरणा देने वाला व्यक्ति सब जगह नहीं मिलता है, तो उससे ज़्यादा कीमती काम है. उसको बाजार में लोग रेडी मिलते नहीं उसके लिए कि उसको हायर कर लो 50,000 में, वो आएगा और लोगों को इंस्पिरेशन देगा. ऐसा हायर नहीं कर सकते उसको. तो अगर कॉन्स्टेंटली किसी को आपको कृष्णा कॉन्शियस रहना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत नश्वर है, और इस जीवन में अगर हमने भगवान के साथ में सेवा करने का मौका नहीं लिया तो हम दोबारा आएंगे यहाँ पर. और एक भावना उसके पीछे और है कि अगर मैंने किसी को संकट में सहारा दिया तो मुझे भी कोई संकट में सहारा देगा, और मुझे किसी ने पहले संकट में सहारा दिया है इसलिए मुझे अभी संकट में सहारा उसको देना चाहिए. मराठी में एक शब्द है, उसका नाम है कड़कड़. क्या बताएंगे इंग्लिश में उसको, कड़कड़, तड़प तड़प, अंदर में ही तड़प होनी चाहिए. क्योंकि हम भी कभी तड़पे थे किसी चीज से, तभी किसी ने हमको सहारा दिया था, तो जब ये तड़प किसी के अंदर दिखाई पड़ती तो हमको भी जाना चाहिए भाग के. सबको तो नहीं कर सकते, कभी नहीं रहेंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मुमकिन है वो करना ही चाहिए, आउट ऑफ द वे जाके करना चाहिए. क्योंकि जब हम दायरे के बाहर जाकर, आउट ऑफ द वे जाकर किसी को मदद करते हैं तो हमें भी उस प्रकार की मदद आगे होती है जब हम संकट में आते हैं. और एक भक्त के सिवा कोई भी हमको मदद नहीं कर सकता है. एक भक्ति ऐसी जाती है जो मदद करने लायक है. और बहुत ही आंतरिक समाधान प्राप्त होता है इसके अंदर. मैंने उधर क्या बताया आपको सुबह मीटिंग में, कि सबसे बड़ी की मूल्यवान चीज़ यह है कि किसी के हृदय में घर बसाना. मोस्ट पावरफुल थिंग इज टू बी एबल टू क्रिएट स्पेस फॉर यू इन समबडीज हार्ट. मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ लाइफ, अचीवमेंट ऑफ लाइफ. किसी के साथ में परमानेंट रिश्ता प्रेम का पैदा करना, ये एक दुनिया का जीवन का बहुत कीमती एसेट है, कीमती संपत्ति है, और वही हमको जीवन में और संकट में काम आता है, और कोई चीज़ काम नहीं आता है. तो खुशी इस बात की है कि यह प्रसंग से वो परिवार से मेरा जीवन भर का संबंध हो गया. अभी ऐसे और भी कोई बहुत परिवार है जिसका जीवन भर का संबंध हो गया. तो भक्त तो कभी हमेशा देखते रहते हैं कि किसी को संकट है तो वो कब मदद करूँ उसको. जब निरपेक्ष मदद कोई करता है ना, अगर कोई अपेक्षापूर्ण मदद करता है तो आसान है, आपने उसका अपेक्षा पूरा कर दे ले, 50,000 का ले ले, तुमने सेवा दिया 50,000 ले लो, खत्म. नो बॉन्डेज, नो बर्डन. जो व्यक्ति बोलता है ना कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, तो वो उसका ऋणी हो जाता है. भगवान भी ऋणी हो जाते हैं. भगवान बोले ले लो ले लो ले लो प्रहलाद ले लो, मुझे देना है आपको. बोलते नहीं नहीं व्यापारी नहीं हूँ, मुझे नहीं लेना आपसे. तो भगवान उसके हो गए, मुझसे कुछ लेता ही नहीं है तो मैं ही उसका हो जाता हूँ, यू नो आई कांट गिव यू एनीथिंग, सो आई एम ओनली बिकमिंग योर्स। ये बहुत सुंदर चीज है लाइफ में, और आपको आपने किसी को दिया हुआ मदद जो है ना वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आपने बहुत समय दिया होगा, आपका बहुत कीमती हजारों रुपए का समय जो था आपने उसको दिया और आपका प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि आपने एक्स्ट्रा समय दिया और वो वेस्ट गया, आपका इनकम नहीं हुआ और कई जगह पे, ऐसा गणित करेंगे ना तो फिर वो उसका आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन आप निरपेक्ष भाव से किसी को मदद करेंगे ना, आउट ऑफ द वे जाके, मतलब ड्यूटी आपका ख़त्म हो गया है और आप नहीं भी कर सकते थे, आपको नींद भी आ रही थी, बहुत थक भी गए थे, बीमार भी थे आप, ऐसा बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे आपको, आपको अगर नहीं करेंगे तो आपको कोई दोष नहीं देगा कि हाँ ठीक है अभी ड्यूटी भी खत्म हो गई, थक भी गए थे और बेचारी बीमार भी थी, कैसे आएगी वो। लेकिन उसमें भी अगर आप आके कुछ करते हो तो फिर वो ऐसा इतिहास भी लिखा जाता है। इतिहास में कौन सी बातें लिखी जाती है जो सामान्य रूटीन में नहीं होती है, जो असामान्य होती है वो इतिहास में आ जाती है। ऐसा है वो। आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि मैं घुमा फिरा के बोल रहा हूँ? कंटिन्यूअस कृष्ण कॉन्शियस अगर किसी को बनना है उसको यह पता होना चाहिए कि जीवन हमेशा संकट से भरा हुआ है। आज दूसरे को मदद करो, कल तुमको संकट होगा तो तुम दूसरे तुमको मदद करेंगे। और ये भावना करने की भी जरूरत नहीं आपको कि हाँ मैं अभी करूँगा तो मेरी मदद आगे होगी, ये भी एक प्रकार का स्वार्थ हो गया ना। आप जस्ट भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेवा करते रहो बस, तो भगवान आपको और कृष्ण कॉन्शियस बनाएंगे, और कृष्ण कॉन्शियस बनाएंगे। और निरंतर कृष्ण कॉन्शियस रहने का एक ही फॉर्मूला है, वो है संतों का संग। निरंतर संत के कांटेक्ट में रहो, लेक्चर के माध्यम से रहो, पर्सनल से माध्यम से रहो, या जो भी आपको मुमकिन है। हर बार साथ में बैठना मुमकिन नहीं होता संत के साथ, लेकिन उसकी वाणी के साथ में हमेशा जुड़े रहो। और वाणी के साथ जुड़ने का दो मार्ग है, एक वाणी उनकी सुनना श्रवण के रूप में, और एक वाणी मतलब उपदेश का पालन करना, उनका आज्ञा पालन करना। वन इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वो भी वाणी का संग है, और एक वाणी का श्रवण है, वो भी वाणी का ही संग है। तो वाणी का संग हमेशा दोनों प्रकार से करते रहना चाहिए। जब आप संतों के सेकेंड जो है ना वाणी का संग, उपदेश का पालन जब आप करोगे, आज्ञा पालन, तो उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। उपदेश का पालन करने से संत की कृपा, गुरु की कृपा हमेशा बनी रहती है। कॉन्स्टेंटली यू आर ग्रेस्ड बाय द मर्सी ऑफ गुरु। और जब गुरु की कृपा होती है तो क्या होता है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। जब गुरु की कृपा प्रसाद प्राप्त होता है तो भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वो और कृष्ण कॉन्शियस हो जाता है, तो उस बढ़े हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में फिर दोबारा गुरु की सेवा करते हैं, फिर उसको और कृपा प्राप्त होती है, फिर वो कृपा प्राप्त होने से और भगवान प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो और भगवान की सेवा करते हैं। इस तरह से वो सिलसिला चलते रहता है। इसलिए अगर आप सांचे में बैठकर कोई सेवा करेंगे तो उसका एक्स लाभ होगा, सांचे के बाहर जाकर करो तो आपको क्या लाभ होगा ना, उसको कोई गिनती नहीं कर सकता है। ऐसा ही है सब। हम लोग कैसा है, थोड़ी थोड़ी काम करेंगे लेकिन ड्यूटी के टाइम में करेंगे, समझो जितना ड्यूटी है उतना ही करेंगे। एक एक तरीका है, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, नियम से कर रहे हो। जैसे आपने अपना सारा स्वार्थ छोड़कर आगे जाके किया ना, उसका चमत्कार दिखाई पड़ेगा आपको, ऐसे अद्भुत अनुभव मिलेंगे आपको, परिवर्तन के, ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे आपको अनुभव मिलेंगे। हर चीज में ऐसा ही है, जब आप ढांचे से बाहर जाकर कुछ काम करेंगे ना तो आपको बहुत कृपा मिलती है। जैसे अभी अभी मैं एक कथा अभी मैं किताब में लिखी, वो ऐसी थी कि एक पेशेंट था आईसीयू में, वो ड्रंकार्ड था महिंद्रा का, और कुछ बीमारी से हॉस्पिटल में आया था। तो भद्रापिया सिस्टर भी ओटी में काम करती थी, तो आईसीयू में काम नहीं करती थी। तो तो कैसे भी उसका पेशेंट का संपर्क हो गया, कुछ पेशेंट का वाइफ मिली और रिक्वेस्ट किया, आई डोंट नो हाउ, बट वो अपना ओटी का ड्यूटी समाप्त करने के बाद ऑफ ड्यूटी जाके उसको प्रचार करती थी। शराबी था पक्का, पैरा महिंद्रा में फेमस था वो। फिर उसके बाद वो थोड़ा ठीक हो गया और फिर वो नॉर्मल वार्ड में आया, उधर भी वो उसको अपनी ऑफ ड्यूटी जाके फॉलो करती थी, रात को 11 बजे तक उसको प्रचार करती थी। ड्यूटी ब्यूटी सब हो गया उसका, अब कल सब जो वापस काम पे जाना है, फिर भी वो उसको जाके मिलती थी और प्रचार करती थी। तो फिर वो डिस्चार्ज हो गया, घर चला गया। तो उन्होंने 1999 में दिसंबर में पहला प्रेमांजलि प्रोग्राम अरेंज किया था, फर्स्ट प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के समय पर वो तैयारी कर रहे सब लोग लड़कियां मिलकर, भद्रा प्रिया, परमेश्वरी और मदन, बहुत सारी मंजरियाँ थी उस समय। तो वो कोई बोला कि आपको कोई मिलने आया है, और अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, प्रोग्राम करना है, अभी टाइम नहीं है, रात को 11 बजे फ्री हो जाऊँगी। तो उसने कहा ऐसा बोलने के बाद कौन रुकेगा, चला जाएगा वो। तो प्रोग्राम खत्म हो गया तो वापस मैसेज आया कि आप भी, आपके लिए रुका है अभी भी। तो फिर वो तब फ्री हो गए, तो मिली उसको 11 बजे रात। तो बोलते कि मैं सीताराम यादव हूँ, वही व्यक्ति हूँ जो आपने मुझे बताया था ना, अब मैंने सब कुछ शराब वराब सब छोड़ दिया है, मैं 7 माला जप करता हूँ, 4 नियम पालन करता हूँ, पहले बार जॉब छूट गया मेरा, अभी क्या करूँ। लोग आप तो म्यूजिशियन हो, आप अच्छा म्यूजिक सिखाओ, हारमोनियम सिखाओ, मैं कल से आपके क्लास में आने लगती हूँ। आज वो व्यक्ति आज के तारीख में 16 राउंडर पक्का रेडी फॉर इनिशिएशन है, और वो महिंद्रा का जॉब छूट गया उसका, लेकिन वो इतना फेमस म्यूजिशियन हो गया कि राधा गोपीनाथ से भी और मीरा रोड से भी फुल पैक है उसके पास, कोई टाइट जगह नहीं है उसके पास। तो उसको खुद को भी यकीन नहीं हुआ, कह रही बोला देखो सिस्टर, आपने जो बताया ना वो सब मैंने फॉलो किया, एवरीथिंग सब किया मैंने, एवरीथिंग आई डिड। अब पत्नी परेशान है कि वो ज़्यादा ही भक्ति कर रहे हैं। वो बोला तुमने मुझे बोला था ना सिस्टर को कि इनको समझाओ, तो तुम्हारे वजह से तो मैं भक्त बना, अभी कोई परेशान कर रही है मुझे कि तू भक्त बन जा अभी, क्योंकि ऑफ द वे जाके उसने किया ना सब कुछ, त्याग किया ना कुछ ऐसा है। त्याग केवल आदमी ह्यूमन बीइंग कर सकता है, और कोई त्याग नहीं कर सकता है, इंसान के अलावा कोई त्याग नहीं कर सकता, इंसान ह्यूमन बीइंग ही त्याग कर सकता है। और त्याग जब भगवान के लिए करते हैं ना, कुछ समय का, पैसे का, इच्छा का त्याग, स्वार्थ का त्याग करके कुछ भगवान के लिए करते ना, तो बहुत ज़्यादा भगवान ऋणी हो जाते हैं उसके। और कुछ प्रश्न है?